नमस्कार, आज हम एक ऐसे गहरे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो शायद हर सोचने वाले इंसान के मन में कभी ना कभी आता ही है। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है? हमारे पास जो सामग्री है वो इसी मुद्दे से जुड़े कुछ विचारों को सामने रखती है। इसमें ईश्वर के होने या न होने के तर्क हैं, विज्ञान की क्या सीमाएं हैं, विश्वास कितना जरूरी है।
हाँ, और ये सृष्टि, ये दुनिया कितनी अजीब और अद्भुत है, इस पर भी बात है।
बिल्कुल, जब हम ये सब देखते हैं ना, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतने तरह के जीव, तो ये सवाल तो उठता ही है कि क्या कोई इसे चला रहा है, कोई शक्ति है इसके पीछे।
सही बात है।
तो आज हम इन्हीं सब तर्कों और उदाहरणों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें इस सामग्री में मिले हैं।
जी, और ये जो स्रोत हैं हमारे पास, ये मुख्य रूप से दो तरह की सोच दिखाते हैं। एक तो वो जो ईश्वर में यकीन रखते हैं, आस्तिक जिन्हें कहते हैं।
हाँ
इन्हीं दो विचारों के इर्द गिर्द घूमेगी और जो भी दिलचस्प मिसालें दी गई हैं उन पर भी बात करेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले यही देखते हैं, आस्था और सबूत का जो मामला है, मतलब विज्ञान कहाँ तक पहुंच पाता है इसमें। सामग्री में ये बात है कि नास्तिकों का एक बड़ा तर्क ये होता है कि भाई विज्ञान ने तो ईश्वर को साबित किया नहीं,
हाँ, ये कॉमन आर्ग्यूमेंट है।
ईश्वर कहीं दिखता भी नहीं, तो फिर मानना क्यों, ये तो अंधविश्वास हुआ ना। पर यहीं पर श्रोत एक दूसरा सवाल खड़ा करता है, क्या हम सिर्फ वही मानते हैं जिसे विज्ञान साबित कर दे?
अच्छा पॉइंट है।
जैसे कुछ नैतिक नियम होते हैं, सामाजिक मान्यताएं होती हैं। अब जैसे परिवार में ही करीबी रिश्तों में यौन संबंध गलत माने जाते हैं।
बिल्कुल।
अब इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ शायद ना मिले, पर पूरा समाज इस बात को मानता है।
हाँ, और यहाँ स्रोत ये भी कहता है कि जिसे हम आमतौर पर विज्ञान समझते हैं, मतलब पदार्थ विज्ञान, उसकी एक सीमा है। वो पदार्थ की ही जांच कर सकता है।
अच्छा,
जो चीज़ें बहुत सूक्ष्म हैं, जैसे कोई आध्यात्मिक तत्व हो या चेतना हो, वो पदार्थ विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं।
तो मतलब जो दिखता नहीं उसका अस्तित्व विज्ञान के लिए मानना मुश्किल है।
हाँ, पर स्रोत कहता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं पर सच हैं। जैसे अपनी आँख में लगा काजल कोई खुद देख सकता है क्या?
नहीं, वो तो नहीं।
या तालाब में पानी की एक बूंद गिर जाए तो क्या वो अलग से नज़र आती है?
नहीं,
दिन में तारे होते हैं पर सूरज की रोशनी में दिखते नहीं।
हाँ ये बात तो है।
हवा में नमी है, दूध में मक्खन है, सब अदृश्य हैं पर हैं तो। पानी में नमक घोल दो, दिखेगा नहीं पर चखने पर पता चल जाएगा कि है।
और एक बात और कही गई है कि अगर कोई चीज हमें नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं।
बिल्कुल। जैसे कोई दोस्त घर पर ना मिले तो हम ये थोड़ी मान लेते हैं कि वो दोस्त दुनिया में ही नहीं रहा।
सही बात है। और वो पिता वाली मिसाल भी दी है कि अपना पिता कौन है इसका कोई डायरेक्ट साइंटिफिक प्रूफ शायद मुश्किल हो, हम माँ के कहने पर उनकी गवाही पर यकीन करते हैं।
जी, तो सामग्री के हिसाब से ईश्वर का होना या ना होना, ये पदार्थ विज्ञान का नहीं बल्कि अध्यात्म विज्ञान का विषय है।
अध्यात्म विज्ञान,
हाँ, जैसे तपस्वी ऋषि मुनि, वो अपनी साधना से, अपनी खास तरह की अनुभूति से, जिसे वो दिव्य दृष्टि कहते हैं, उससे महसूस करने का दावा करते हैं। मतलब हर चीज को नापने का पैमाना एक नहीं हो सकता।
यानी प्रत्यक्ष प्रमाण ही सब कुछ नहीं है।
हाँ, उसकी अपनी सीमाएं हैं।
चलिए अब विश्वास की बात करते हैं। विश्वासम फलदायकम, है ना, विश्वास फल देता है।
हाँ, ये कहावत है।
इसे समझाने के लिए गणित का एक बड़ा मजेदार उदाहरण है सामग्री में, रमेश चंद्र के धन बंटवारे वाला।
हाँ, वो पहेली कि कुल कितना पैसा था, अगर उमेश को आधा दिया, दिनेश को तिहाई और आखिर में सुशील के पास 100 रुपये बचे।
हाँ, अब सीधे सीधे सोचने बैठो तो शायद उलझ जाओ कि शुरू में कितना था।
पर गणित में एक तरीका होता है जो एक तरह के विश्वास पर ही चलता है।
वो कैसे?
सामग्री बताती है कि गणितज्ञ क्या करते हैं, वो एक अज्ञात चीज को मान लेते हैं। जैसे माना कि उत्तर एक्स है,
अच्छा, हाँ
तो इस सवाल में माना कि कुल धन 1 रुपया है। अब ये सच तो नहीं है पर ये एक धारणा है, एक विश्वास कि चलो मान के देखते हैं।
ठीक है।
अब इस 1 रुपये के हिसाब से देखें तो उमेश को मिला आधा, 1/2, दिनेश को तिहाई, 1/3, दोनों का जोड़ हुआ 5/6।
यानी 5/6 बंट गया।
हाँ, तो बचा कितना? 1 में से 5/6 गया, बचा 1/6। और सवाल कहता है कि सुशील के पास 100 रुपये बचे थे, तो इसका मतलब ये 1/6 हिस्सा 100 रुपये के बराबर है।
अच्छा,
अब बस एक एक नियम लगा दीजिए, अगर 1/6 हिस्सा 100 रुपये है तो पूरा एक हिस्सा यानी कुल धन कितना होगा? 100 × 6 यानी 600 रुपये।
अरे वाह, जवाब बिल्कुल सही आ गया, जबकि शुरुआत हमने एक ऐसी बात से की थी जो सच नहीं थी कि कुल धन 1 रुपया
हाँ,
है ना।
इसीलिए स्रोत कहता है, असंभव तरीके से संभव की खोज का नाम विश्वास है।
ये तो कमाल की बात है। रेखा गणित मतलब ज्योमेट्री की भी ऐसी ही मिसाल दी है। बिंदु या पॉइंट,
हाँ पॉइंट,
उसकी परिभाषा क्या है? न लंबाई, न चौड़ाई, न मोटाई, मतलब एक तरह से वो है ही नहीं, अस्तित्वहीन है।
सही।
लेकिन पूरी ज्योमेट्री इसी बिंदु पर टिकी है और उसके सिद्धांत बिल्कुल सटीक नतीजे देते हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक न होने वाली चीज पर आधारित विज्ञान सच परिणाम दे?
बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। और श्रोत आगे रेखागणित के कुछ स्वयंसिद्ध सत्यों का भी जिक्र करता है जिन्हें एक्सियोम्स कहते हैं।
अच्छा, जैसे?
जैसे ये कि एक सीधी रेखा पर अगर दूसरी सीधी रेखा खड़ी करें तो दो समकोण बनते हैं, मतलब 90 डिग्री के कोण।
हाँ, ये तो पढ़ा है।
अब इसे साबित नहीं किया जाता, इसे बस मान लिया जाता है। ये एक विश्वास है, पर इसी तरह के विश्वासों और सिद्धांतों के आधार पर वैज्ञानिक इतनी जटिल गणनाएं करते हैं कि अंतरिक्ष यान चांद और मंगल तक पहुंच जाते हैं।
वाह,
खगोल विज्ञान भी तो ऐसा ही है। ग्रहों तारों की दूरी नापने के लिए वृत्त के जो सिद्धांत इस्तेमाल होते हैं वो भी तो एक तरह की प्रतिज्ञा या विश्वास पर ही आधारित हैं।
तो मतलब ये हुआ कि जैसे गणित और विज्ञान भी कुछ बुनियादी मान्यताओं या विश्वासों पर चलकर ठोस नतीजे देते हैं,
हाँ
वैसे ही श्रोत ये कह रहा है कि ईश्वर पर विश्वास भी जीवन में व्यक्तिगत हो या सामाजिक अच्छे नतीजे ला सकता है।
जी, यही तर्क दिया जा रहा है। और देखिए ना, हमारा रोज का जीवन भी तो विश्वास पर ही चलता है।
हाँ, वो तो है।
परिवार में एक दूसरे पर भरोसा, दोस्तों पर भरोसा, डॉक्टर पर मरीज का भरोसा, सरकार पर नागरिकों का भरोसा। जहां शक आ जाता है, अविश्वास आ जाता है,
वहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है, दुख और परेशानी।
बिल्कुल।
अच्छा, अब आते हैं ईश्वर के स्वरूप पर। सामग्री में एक दिलचस्प बात कही गई है कि ईश्वर शायद कोई हुकुम चलाने वाला राजा जैसा व्यक्ति न हो, बल्कि एक सिस्टम, एक व्यवस्था, एक नियम हो जिससे ये दुनिया चल रही है।
हाँ, एक यूनिवर्सल लॉ की तरह।
और इसे समझाने के लिए अपने ही शरीर का उदाहरण दिया है। ये मानव शरीर क्या गजब की मशीन है
ना, अद्भुत।
सिर्फ अपनी त्वचा, अपनी स्किन को ही देख लें। ऊपर से तो बस एक परत दिखती है,
हाँ,
पर सामग्री बताती है कि सिर्फ एक वर्ग इंच त्वचा के नीचे करीब 72 फीट लंबी नसें, तंत्रिकाएं होती हैं और 12 फीट से ज्यादा लंबी खून की नलिकाएं।
बाप रे, एक वर्ग इंच में इतना कुछ।
हाँ, और ये तापमान कंट्रोल करती है, गंदगी बाहर निकालती है। अपने आप में एक पूरी इंजीनियरिंग है ये।
अविश्वसनीय।
और फिर त्वचा के नीचे मांसपेशियां हैं, बारीक बारीक रेशों से बनी, पर उनमें ताकत इतनी कि अपने वजन से लाखों गुना ज्यादा भार सह सकती हैं।
और कुछ अपने आप काम करती हैं, जैसे दिल का धड़कना।
हाँ, पाचन क्रिया, और कुछ हमारी मर्जी से चलती हैं, और उन्हें हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, जैसे डांस में या सर्कस में लोग करते हैं।
सही। और चोट लगने पर हड्डियों को भी बचाती हैं।
शरीर के अंदर देखें तो गुर्दे मतलब किडनीज क्या कमाल का काम करते हैं। छोटे से अंग हैं,
सेम के बीज जैसे।
हाँ, और लगातार खून साफ करते रहते हैं। उसमें नमक, पोटेशियम, कैल्शियम सबका बैलेंस बनाए रखते हैं।
और श्रुत के मुताबिक दोनों गुर्दे मिलकर एक घंटे में शरीर के वजन से भी दुगना खून छान देते हैं।
दुगुना एक घंटे में?
जी हाँ, और उनमें लाखों बारीक नलिकाएं होती हैं। अगर सबको जोड़ दें तो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी।
क्या बात है।
और एक गुर्दा खराब भी हो जाए तो दूसरा उसका काम संभाल लेता है। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि कितनी जटिल और कितनी कुशल व्यवस्था हमारे शरीर को चला रही है।
या फिर डीएनए की बात करें, एक नन्ही सी कोशिका सेल,
हाँ,
उसके अंदर अरबों अक्षर जितनी जानकारी, पूरे शरीर का ब्लूप्रिंट, हमारी पीढ़ियों की जानकारी, सब उसी में
है ना। यहीं पर स्त्रोत ये सवाल उठाता है कि क्या ये सब बस केमिकल रिएक्शन का नतीजा है
या इसके पीछे कोई चेतना, कोई इंटेलिजेंस काम कर रही है।
एक कोशिका वाला जीव अमीबा,
उसका भी उदाहरण है, वो एक सेल का है पर चल सकता है, महसूस कर सकता है, खाना खा सकता है, बढ़ सकता है, गंदगी निकाल सकता है, अपनी नस्ल बढ़ा सकता है,
सब कुछ करता है वो।
लेकिन जब कोई जीव मर जाता है तो उसके शरीर में सारे केमिकल तो मौजूद रहते हैं।
हाँ, वो तो रहते ही हैं।
पर वो जान, वो चेतना कहाँ चली जाती है? वो मृत कोशिका तो फिर किसी काम की नहीं रहती, जैसे उबले अंडे की सफेदी।
सही। यहीं पर सामग्री ये इशारा करती है कि शायद चेतना शरीर से अलग, उससे ज्यादा सूक्ष्म कोई चीज है।
अच्छा,
कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे योगी संत हरिदास थे या कर्नल टाउनशेड। कहा जाता है कि इन्होंने अपनी इच्छा से कुछ देर के लिए अपने प्राण शरीर से अलग किए और फिर वापस आ गए।
ये तो बहुत अजीब बात है।
तो श्रोत इन किस्सों से ये तर्क देता है कि चेतना शायद सिर्फ शरीर के केमिकल्स का जोड़ नहीं है, बल्कि उससे स्वतंत्र भी हो सकती है।
लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि ये जो इतनी जटिलता है शरीर में या प्रकृति में, क्या ये सिर्फ एवोल्यूशन मतलब विकासवाद का नतीजा नहीं हो सकती? इस पर कुछ कहा है सामग्री में?
देखिए, इन अंशों में सीधे सीधे विकासवाद पर बहस नहीं की गई है। सामग्री का जोर इस बात पर ज्यादा लग रहा है कि ये जो जटिलता है, ये व्यवस्था है, ये सटीकता है, ये इतनी ज्यादा है कि सोचने पर मजबूर करती है
कि क्या ये सब बस अचानक संयोग से हो गया?
हाँ, या बिना किसी दिशा के चलने वाली प्रक्रियाओं से। सवाल ये उठाया गया है कि क्या इसके पीछे कोई प्लान है, कोई बुद्धि है, कोई मकसद है? श्रोत में कुछ ऐसे इंसानों की मिसालें भी हैं जो मतलब सामान्य इंसानी क्षमताओं से बहुत आगे नजर आते हैं।
हाँ, वो भी हैं।
जैसे कोई साहेब अल्लाह शाह थे जिन्होंने बहुत भारी वजन उठाया, या वो कराटे मास्टर मास ओयामा जिन्होंने एक ही वार में सांडों को गिरा दिया।
जी, और पटना के श्री भगवान आर जो सालों तक बिना कुछ खाए सिर्फ पानी और हवा पर जिंदा रहे और स्वस्थ रहे।
हाँ, निराहार जीवन।
या वो डॉक्टर अलक मोहन माथुर जो कांच और लोहा तक पचा जाते थे। ये सब क्या है? ये कैसे मुमकिन है?
मेरे ख्याल से सामग्री इन उदाहरणों को इसलिए सामने रख रही है ताकि ये दिखाया जा सके कि इंसान की क्षमताएं शायद हमारी आज की समझ से कहीं ज्यादा हैं।
अच्छा,
ये उदाहरण एक तरह से विज्ञान की मौजूदा सीमाओं को चुनौती देते हैं और ये सवाल भी उठाते हैं कि क्या हमारे शरीर और चेतना में ऐसी शक्तियां छुपी हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं।
यानी ये भी पदार्थ से परे किसी तत्व की ओर इशारा हो सकता है।
शायद यही दिखाने की कोशिश है।
और सिर्फ इंसान ही नहीं, प्रकृति के दूसरे जीवों में भी तो कमाल की चीजें हैं।
हाँ, बिल्कुल हैं। सामग्री में जीवों के आत्मरक्षा के तरीकों का जिक्र है। जैसे स्लॉथ नाम का पक्षी है, उसके रोएं उल्टे होते हैं।
हाँ।
या व्हेल मछली का मुंह इतना छोटा क्यों है?
अच्छा।
और जीवों की अपनी समझदारी, उनका सामाजिक जीवन। चींटियों का समाज देखिए, क्या गजब का संगठन है।
हाँ, चींटियों को तो सुना है।
खाना बांटना, गंध के जरिए बात करना, पुल बना लेना, खेती तक करना और पशुपालन भी। वो एफिड्स नाम के कीड़ों से मीठा रस लेती हैं। युद्ध की नीतियां भी होती हैं उनमें।
कमाल है, ये तो पूरा एक समाज है।
बिल्कुल। फिर रेवेन यानी काले कौवे का उदाहरण है। उनमें इंसानों जैसी समझदारी देखी गई है। रिश्ते बनाने का तरीका बड़ा जटिल होता है। मिलकर घर बनाते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, न्याय की भावना तक होती है।
तो ये सब उदाहरण क्या बताते हैं? कि बुद्धि और सामाजिकता सिर्फ इंसानों में नहीं है।
हाँ, शायद सामग्री यही कहना चाह रही है कि जीवन, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या छोटा सा कीड़ा, उसमें एक तरह की अंदरूनी समझ या व्यवस्था काम कर रही है। ये सब सृष्टि की गहराई और उसके रहस्यों की तरफ ध्यान खींचते हैं।
अब एक बहुत जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सवाल अक्सर उठता है, खासकर ईश्वर को मानने वालों के लिए, कि अगर ईश्वर है और वो दयालु है तो फिर दुनिया में इतना दुख, इतनी तकलीफ क्यों है?
हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है।
सामग्री इस बारे में क्या कहती है?
स्रोत यहाँ दो तरह के नजरियों का फर्क बताता है।
एक पश्चिमी सोच है
जो मानती है कि भाई सब कुछ ईश्वर ने बनाया तो दुख की जिम्मेदारी भी उसी की है।
हाँ, ये तर्क तो सुना है।
पर एक भारतीय दृष्टिकोण भी है।
जी।
जिसके अनुसार जीव यानी हम लोग अपने कर्म करने में स्वतंत्र हैं।
ओके।
और हम जो भी करते हैं उसका फल हमें मिलता है सुख या दुख के रूप में।
अच्छा, कर्म फल का सिद्धांत।
जी। इस नजरिए में ईश्वर एक व्यवस्थापक जैसा है जो कर्म फल के नियम को बनाए रखता है या शायद मुश्किल में मदद करता है, पर हर घटना का सीधा करता नहीं है।
तो फिर दुख का उद्देश्य क्या है? क्या इसका कोई मतलब है स्रोत के हिसाब से?
हाँ, सामग्री कहती है कि दुख की भी एक भूमिका है, शायद एक सकारात्मक भूमिका।
सकारात्मक? वो कैसे?
दुख हमें मेहनत करने के लिए उकसाता है, हमारी जो शक्तियां सोई हुई हैं उन्हें जगाता है, हमें जरूरत और इच्छा का एहसास कराता है। एक विचारक हैं फ्लिंट, उनका हवाला दिया गया है। वो कहते हैं कि दुख हमारे दिल की कठोरता को कम करता है, हमारे घमंड को तोड़ता है।
अच्छा।
साहस और धैर्य बढ़ाता है, दूसरों के लिए सहानुभूति जगाता है और मुश्किल में अक्सर धर्म में, ईश्वर में आस्था बढ़ती है।
हाँ, ये तो होता है, दुख में सुमिरन सब करें।
बिल्कुल। तो इस नजरिए से देखें तो दुख शायद हमें एक बेहतर इंसान बनाने का जरिया भी हो सकता है।
महाभारत में कुंती का वो किस्सा भी है ना, जब वो कृष्ण से वरदान में दुख मांगती हैं।
हाँ हाँ, बिल्कुल। ताकि दुख रहे तो भगवान की याद बनी रहे। तो स्रोत का जो निष्कर्ष है वो कुछ इसी तरफ जाता है कि असली सुख शायद बाहरी हालात में उतना नहीं है जितना मन की स्थिति में है। ईश्वर और धर्म मतलब अपने सही कर्तव्य पर विश्वास रखते हुए मेहनत से अपना काम करने में है।
दुख तो आएगा जीवन में, पर उसे देखने का नजरिया बदला जा सकता है।
जी बिल्कुल।
तो आज हमने इस स्रोत सामग्री के जरिए ईश्वर के होने या न होने से जुड़े कई काफी उलझे हुए सवालों को समझने की कोशिश की।
हाँ, काफी पढ़ते हैं इस विषय में।
हमने देखा कि कैसे एक तरफ सबूत की मांग है और दूसरी तरफ आस्था का सवाल है। विज्ञान की अपनी हदें हैं, पर विश्वास की भी अपनी एक ताकत है, जैसे हमने गणित के उदाहरणों में देखा।
सही।
फिर हमने मानव शरीर की अविश्वसनीय बनावट और प्रकृति की जटिलता पर बात की, जिसे स्रोत एक गहरी व्यवस्था की निशानी मानता है।
हाँ, वो डिजाइन वाला आर्गुमेंट।
चेतना क्या है, जीवन में कितनी अद्भुत क्षमताएं हो सकती हैं, इस पर भी सोचा।
और अंत में दुख का जो मुश्किल सवाल है, उस पर भी एक अलग दार्शनिक नजरिए को समझने की कोशिश की।
ये सारे उदाहरण जो सामग्री में हैं, चाहे वो शरीर के अंदर की दुनिया हो या चींटियों का समाज या वो लोग जिनकी क्षमताएं हैरान करती हैं, ये सब मिलकर एक ही सवाल पूछते लगते हैं
कि क्या ये सब बस यूं ही है, संयोग से, या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है, कोई व्यवस्था, कोई चेतना काम कर रही है। और यहीं पे स्रोत का वो आखिरी वाक्य मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करता है।
कौन सा?
कि ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है? इन प्रश्नों का उत्तर वही पा सकता है जो ये जानने का गहराई से प्रयास करे कि प्रश्नकर्ता कौन है, कहाँ है, क्यों है, कैसा है।
वाह, मतलब खोज बाहर नहीं, अपने अंदर करनी होगी।
शायद असली जवाब वही मिले।
इसी गहरे विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
हाँ, जरूर।
आज की इस चर्चा में प्रकृति के किस अजूबे ने या इंसान की किस क्षमता ने आपको अस्तित्व की इस बड़ी पहेली के बारे में सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? इस पर जरूर गौर कीजिएगा।